आए थे, बाद में बैकुंठ से भी बढ़ करके प्रह्लाद जी को बताया। बैकुंठ से लक्ष्मी जी से बढ़ करके, ब्रह्मा आदि से बढ़ करके, कहते हैं कि क्योंकि यद्यपि वो लोक में भी उच्च कोटि के भक्त ऐसा नहीं है। ब्रह्मा यद्यपि भगवान के सेवक है, लेकिन फिर भी उनका अंदर में एक भाव रहता है कि मैं भगवान के पुत्र हूं। संबंध जन्य अभिमान आ जाता है। बेटा होने के कारण एक होता ना, मेरे पापा है, ये संबंध जनित एक अभिमान आता है उनका। लक्ष्मी जी भी यद्यपि निरंतर भगवत सेवा में रत है, लेकिन फिर भी उनका अंदर में अभिमान आता है, क्या मैं उनका अर्धांगिनी वाइफ, उनके पत्नी होने का जो संबंध जन अभिमान उनके अंदर आता है। भगवान शंकर उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके काम तो मैं ही कर रहा हूं, जो काम कोई नहीं राजी होते, ये डिफिकल्ट काम मैं ही कर रहा हूं, मैं ईश्वर हूं, ये सब अभिमान उन लोग के अंदर आता है। लेकिन प्रहलाद से कोई अभिमान नहीं, निराभिमान बेचारे, शुरू से ही असुर कुल जात, नीच जन्म, ना वयस है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना कुल है, कुछ ही नहीं है, ना कोई संबंध है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, बिल्कुल निरहंकार निराभिमान होकर के भगवान की भक्ति में लगे, इसलिए वो बड़े हैं। किसका अंदर थोड़ा सा अभिमान आ जाएगा ना, तो इसे कहते हैं अहंकार को कपट खटाई। जैसे दूध हो, 50 लीटर दूध है, बढ़िया एक ग्लास का दूध, तो उसमें 2-4 ग्राम थोड़ा खट्टाई डाल दो, इसे कपटता कहते हैं, अहंकार को डाल दो तो क्या होगा, फट जाएगा पूरा, 50 लीटर को फाड़ देगा, इतने थोड़ा सा 5 ड्रॉप। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन कितने सदाचार, कितने स्वच्छता, कितने बढ़िया प्रकार के भली प्रकार क्यों ना हो, थोड़ा सा अहंकार की कपटता अभिमान जब आ जाए तो इसे फाड़ करके रख देगा, हाँ टाइम नहीं लगा फटा देगा, सारे दूध फाड़ देगा, अपना कैरियर ही खत्म कर देगा, एक कपटता ऐसे प्रभाव हो उसका। तो इसलिए इस निष्कपट निरहंकार निरभिमान से प्रहलाद, इसलिए आप उनके पास क्यों नहीं जाते। तो नारद जी प्रकृत महाराज माँ ऐसे श्री शंकर जी का मुखकमल से प्रहलाद की प्रशंसा, प्रहलाद की भक्ति के गारिमा सुन करके नारद जी विस्मित हो गए, बोले वी रियली इज इट सो, अरे मेरा ही चला है तो रियली विस्मित हो करके अपने मन रूपी जान में सवार हो करके हाई स्पीड में चले। उनको तो कोई ट्रैफिक जाम का फर्क नहीं पड़ता, वो रोड में जाते नहीं, रेड लाइट ग्रीन लाइट का उनको कोई चक्कर ही नहीं है ना, जो आकाश मार्ग में जाता है उनके ट्रैफिक लूट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो इस जान से हाई स्पीड में आए और डायरेक्ट सुतल लोक पर गए। जब सुतल लोक पहुंचे तब प्रहलाद जी अब अपने पोते के घर में रहते थे, पोते कौन थे उनके, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, बलि तभी असुरों के सम्राट थे, असुराधिपति, और कई बार इंद्र को मारपीट करके, सारे ये सब एक्सपर्ट है, देवासुर संग्राम में वही मैन थे, सब जगह में वही एड थे, असुरराज थे बलि। तो फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पोते के प्रति बहुत लगाव है, इसलिए अपने कहीं ना वहीं उन्हीं के पास रहते हैं, और बलि महाराज का भी प्रहलाद के प्रति बहुत संबंध है, इतने अटैचमेंट है, और क्या संबंध होगा, नाना पोता ना, दादा पोता का बड़े गहरा संबंध था, कोई किसी को नहीं छोड़ते थे, पोता डेली जाता था, दादाजी के चरण छूता था, दादाजी की बात मानता, उनके पास बैठता था, दादा भी खुद उनको लाड़ पार करते, उनको छोड़कर अलग जाते नहीं थे कहीं, उन्हीं के घर में रहते थे, यद्यपि उनका सेपरेट क्वार्टर सब कुछ था व्यवस्था, लेकिन नहीं जाते। तो नारद जी जब गए तब मॉर्निंग प्रोग्राम हो चुका था, नारद जी ने प्रहलाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम करके अब बैठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम से आकर एकांत में बैठ करके अपने प्रभु के श्री चरण कमल को ध्यान करके प्रेम से मग्न होकर के अश्रु विसर्जन करते हुए उनके ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे थे एकांत में एक आसन पर, नारद जी आ रहे थे, नजर पड़ गया उनका, दूर से देखे गुरुदेव आ रहे हैं, इतने प्रसन्न चित हो गए, उठ करके चले, पहचान लिए अपने गुरु को तो पहचान लेंगे ही, आए और नारद जी आने से पहले दंडवत प्रणिपात किए, उनको प्रणाम करके उनको स्वागत किए, उनको लेकर के बड़े जत्न से आसन से बैठाए, पवित्र आसन में बैठाए और उनको पूजा के हर समय के भांति गुरु जी पधारे इतने दिन के बाद, उनको अर्घ्य पाद्य आदि सब ला करके बाकायदा पूजा किए, पूजा करने के बाद प्रणाम आदि स्तुति आदि करने के बाद विविध सामग्री उनको भेंट दिए। ये तरीका है, खाली ऐसे नहीं प्रणाम करके चुपचाप बैठो चलो बैठो चाय पानी पूछेंगे, ऐसा नहीं। ये जो है उनको किस प्रकार के विधि से उनको स्वागत संबर्धना करना करके प्रणाम आसन पाद्य पादासन सब दे करके विविध सामग्री से बाकायदा षोडश उपचार से पूजा करने के बाद फिर उनको विविध भेंट सामग्री दान के, यद्यपि नारद जी नहीं चाहते थे, बोले रखो रखो यार पूजा बंद करो, नहीं मैं कुछ काम में आया गुरु जी, एक ही तो चांस हम घर में आए हैं, आपकी व्यास पूजा तो मैं नहीं गया था, अब अभी आए हैं तो आपकी एक ही चांस है। तो उनको सब प्रकार नारद जी नहीं चाहते हुए भी बाध्य करके उनको इस प्रकार के सम्मान पूजन किए करके बैठा कर चरण में बैठे, चरण पकड़ करके, तो नारद जी की चांस बोले बोले अब गुरु जी बताए क्या, गुरु जी क्या बताया, गुरु जी तो रेडी करके बैठे थे मीटर ऑन करने के लिए, सीधा शंकर जी से इतने महिमा सुने थे, बोले हे प्रहलाद बहुत दिन के बाद आपसे भेंट हुआ, मुझे पता था मैं कि बाल्यकाल में आपका जो तीव्र भाव था मैं देखा था, लेकिन ज्यादा मिला नहीं था क्योंकि तो गर्भ में थे, अनशिन में अपना पढ़ाई हुआ था, मैं अब जो कोचिंग क्लास दे रहा था तभी आप माँ के गर्भ में थे अब ये जन्म हुए फिर आप बिजी हो गए मैं बिजी हो गया, अब भेंट नहीं हुआ था, लेकिन लंबे समय के बाद मिल रहा हूं, लेकिन क्या सचमुच आप ही एकमात्र कृपा के पात्र है कृष्ण के, ओहो सौभाग्य आपका है, मेरा इतने सौभाग्य है कि मुझे कम से कम ये मिला कि मैं आपको ही कुछ उपदेश कर पाया था बाल्यकाल में, बाल्य थोड़ी गर्भ के अंदर थे, उसको बाल्य स्टेज भी नहीं कहा जा सकता, जन्म नहीं हुआ तो बालक होंगे कैसे, इस स्टेज में उपदेश दिया था, लेकिन आपने यू बिकम सो सीरियस डिवोटी, अभी तक हम ही नहीं बन पाए, और इतनी कृपा के भाजन, आहा हा मुझे तो पिताजी भी बोल रहे थे, शंकर जी ने खुद ही बताए आपको हिरण्यकश्यप की मर्डर के समय में, ये तो प्रमाणित कर दिए खुल्लम खुले भगवान ने, बाकी कोई नहीं मेरे प्रिय आप ही प्रिय है, अर्भक की तरह जब उसी चरण में आप गिरे, भगवान ने आपको उठा करके गोद में बैठा करके चुंबन आदि लेहन आदि चाट करके इतने दुलार किए, इतने लाड़ प्यार किए, आहा हा ब्रह्मादि देवता हम लोग तो स्वप्न में भी इस सुजग नहीं मिलेगा चांस, हम आशा भी नहीं कर सकते, कितने महाभाग्य, और असुर बालक असुर कुल में जात, पढ़े लिखे भी नहीं है, ना जात ठीक है, ना काम ठीक है, ना पढ़ा लिखे है, ना किसी प्रकार के योग्यता ना होने पर भी केवल भगवत कृपा, भगवान से आपने और कृपा करके उठा के लेकर गोद में बैठा करके जो लाड़ कर, ओ हो हम तो भगवान के स्पर्श पात नहीं पाते, ऐसे अद्भुत कृपा से आप हैं। अब आपको तो हमेशा मैं सुना हूं आपके बारे में, आपको भगवान नरसिंह देव ने प्रलुब्ध किए, इतने प्रेरित किए, मेरे बेटा प्रहलाद तो कुछ ले लो मेरे से, ले लो मैं वरद राज हूँ, वर देने में राजा हूँ, तू मेरे पास आकर कुछ वर नहीं चाहेगा, मेरा बदनाम होगा, सो प्लीज टेक समथिंग, इट्स अदरवाइज आई विल गेट बैड नेम, मुझे बदनाम होगा कि क्या आपके इतने छोटे बालक ये था सेवक था, उसको कुछ नहीं दिया आपने, बेचारा उनके पिताजी को मार भी दिए और कुछ नहीं दिए, तो मैं कितने देना चाहा, लेकिन धन्य है भक्तराज आपने तो बारंबार प्रलुब्ध होते हुए भी आपने कुछ नहीं चाहे, केवल अविचल भगवत चरण में भक्ति मांगे और कुछ नहीं चाहे, धन्य है आप धन्य है, ऐसे बड़ी कामना जिस मुक्ति को सभी चाहते हैं इसी मुक्ति को ठुकरा दिए, मुक्ति को नहीं लिए लेकिन राज्य लिए, बताओ सभी लोग चाहते हैं टेंशन घरवाड़ी मेंटेनेंस नहीं, मैनेजिंग बहुत काम झमला है, प्लीज मुझे इसे कुछ करो, एकांत में भजन करो। अरे भगवान तो आपको एकांत मुक्ति दे रहे थे, मुक्ति को ठुकरा करके राजा बने, अपने राज्य बने। क्यों? क्योंकि भगवत इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार कितने भी कठिन से कठिन कार्य, कितने तकलीफ उठाने के लिए आप तैयार हो गए, लेकिन मुक्ति को पदाघात करके उड़ा दे, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मैंने असुर राज्य को स्वीकार किए और असुर परिवार में रहे, गृहस्थ बने, सब कुछ किया आपने भगवत इच्छा को जान करके। और आपको बचपन से आपके महा वैकुंठ पद देते थे तो नहीं लिया आपने, बोले ना, तो आपका मैं क्या कहूँ गुण। इतने बड़े इतने राज्य करने के बाद भी आपका मन टस से मस नहीं हो रहा था, हमेशा राजपद में रहकर भी भगवत पद चिंतन कर रहे थे, इतने ध्यान कर रहे, तो आज से कई गलती हुआ ही नहीं। एक बार तो आपने, जब पता चला आपके इष्टदेव पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर नैमिषारण्य में विराजमान है, तो आप स्वयं नैमिषारण्य चल पड़े, इमीडिएट चल पड़े नैमिषारण्य को भगवान को दर्शन करने के लिए। लेकिन जब नैमिषारण्य आप गए, आप तो असुरराज थे, अपना अपने अपने स्टेटस में गए अपने, लेकिन यहाँ पे आप नैमिषारण्य पहुँचते ही एक तपस्वी मिले आपको, यूनिफॉर्म तो तपस्या का था, तपस्वी का वेश था, लेकिन गड़बड़ ये था, ये तपस्वी धनुष बाण लिए थे, ये तो हिंसा के प्रतीक है भाई, तो बाबा जी है, राइफल क्यों लेकर हूँ, हाँ एक फटी समझ लिया, तो उनको देखे बोले हिंसा के था, तपस्या कैसे, गेरुआ वस्त्र पहन करके तिलक सीता भाई बाबा जी बने हो, सन्यासी हो, धनुष बाण लेकर कैसे, तो उनको पूछा तो वो भी डांट करके बोला हम बागजुद्ध हुआ ललकार, तो युद्ध क्या, बोले मेरे राज्य में तो इसे कपट सन्यासी कैसे, तो उनको मुझे घुसने, वो भी कबूल किया मैं घुसने नहीं दूंगा तुझे, हरा गेट आउट, ये सन्यासी मुझे ऐसे डांटा, मैं देखा कि ये तो बड़ा कबूल ये है, तो उनके साथ घमासान युद्ध हुआ मेरा। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी को, आपने युद्ध किए, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस घमासान युद्ध हुआ, कितने प्रयास आपके समस्त पराक्रम बाण के, लेकिन उसको हरा नहीं सके, और वो भी नहीं हारा, आप भी नहीं हारे, अब हार करके आपकी इज्जत सवाल मुझे रहा जाए, ये तो एक जंगली जंगली लोग मुझे शेड्यूल का शेड्यूल पता नहीं क्या है, कोई भेष बनकर है, मैं तुम बिल्कुल हरा दिया, मैं तुम जितनी पाता हूँ आ करके आप अपने इष्ट देव को खूब पूजा किए। अपने इष्ट देव कौन थे? नरसिंह देव भगवान, नरसिंह की शिला लेकर गए थे अपने, हमेशा उसको लेते हैं, ले करके उनको और जंगल से बढ़िया सुंदर सुंदर सुगंधी फूल लेकर आए, तुलसी लेकर आए, उनको अभिषेक करके सचंदन तुलसी और सुंदर माल्य अर्पण करके विविध प्रार्थना किए, प्रभु मेरे मान रखे, इज्जत रखे, आज तो नाक कटा, आज जगह हारूंगा तो गया, अब क्या नवचरण घुस नहीं सकता, ये शेड्यूल कास्ट में धरा दिया, मैं आज श्रेष्ठ हूँ, असुर नायक हूँ, इतनी बड़ी बलि हूँ, लेकिन ये जंगली तो इसलिए बहुत उनसे अन्य विनय कर प्रार्थना करके भगवान को, और उनसे सुंदर माला आपने हाथ में बना करके उनको अपने इष्ट को पहना करके, जब युद्ध में आए कस करके भीड़ करके नरसिंह के पास आकर भीड़ कर युद्ध के, भीड़ गए युद्ध में, जब बाण मार रहे थे और सन्यासी सामने आया, तब आपके नजर पड़ा, क्या नजर पड़ा, जो माला आपने अपने इष्ट में पहनाया था वो तो उनके गला में पड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस, जिस माला मैंने नरसिंह शिला को पहना था, ये माला तो उनके गला में शोभा दे रहा है। तब आप गंडाउन किए, आप दंडवत किए, प्रभु आप छुपा नहीं सकते, अब आप पहचान लिए, तब इतने स्तुति किए गिड़गिड़ाए, तो प्रभु भी फिर अपने कपट पे छोड़ करके आपके मस्तक पर हाथ रखे, आपको बहुत लाड़ प्यार किए, बोले बेटा प्रहलाद मैं सदा के लिए आपसे हार करके रहूंगा, आपसे कभी जीत ही नहीं सकता, मैं तभी भी हरा था, अभी भी हरा, तेरे से नहीं तेरे वंश से हार कर रहूंगा। बोले यही तो मेरे पोता बलि की, देखो इतने बदमाश है, कई बार इंद्र को मार पीट कर भगाया, जदेव ब्रह्मा जी बोले थे तुम यही रहो यही रहेगा, लेकिन मानता नहीं, जदेव जब से घर पर पीट कर मुंह भगा देते मार करके, छिन-छान लेते हैं, इतने करता है बलि, पता नहीं नियम पालन करता हो कि नहीं करता, क्या करता होगा पता नहीं, हाँ लेकिन इतनी बदमाशी करता है, लेकिन फिर भी उन्हीं के सामने मेरे प्रभु हार गए आपके कारण, नहीं तो वली के पास क्या, तो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी नहीं कर रहा था, मंगला तो नहीं उठता था, हाँ बदमाश गुंडा था वो तो। लेकिन फिर भी भगवान ने उनके सामने इतने परास्त हुए, ये नहीं कि बलि ने आत्मदान किया, उनके सर्वस्व दे दिया, त्रिलोक दान किया, इस कारण से भगवान रीज करके उनके गेट में सिक्योरिटी बनकर खड़े हैं। बोले ऐसे भगवान ने हारे, अभी तक सिक्योरिटी बने खड़े हैं उनके गेट पर। बोले क्या कहा जा सके, सिक्योरिटी बन के खड़े है। बोले ये कदापि नहीं हो सकता कि बलि के दान के फल भगवान को बस करके अपने चौकीदार कर रख दे। बोले नहीं, क्यों, भगवान सख्यात छिन्मय सचिदानंद विग्रह है, और इस भौतिक संसार के कोई वस्तु से उनको पाया नहीं जा सकता, ना संभव ही नहीं, इस भौतिक संसार से सारे वस्तु से उस चीज को पाया नहीं जा सकता। अरे इस चीज में तो भौतिक सुख भी नहीं मिलता है, ये जो शरीर दान करो और ये संसार दान करो प्रॉपर्टी से, ये भौतिक सुख भी नहीं मिलता, तो चिन्मय सुख कैसे मिल जाएगा। बोले इस कारण नहीं था कि बलि के संसार इतने जमीन बाड़ी तीन लोग दे दिया, आपने को दे दिया, इसी कारण से भगवान नहीं, ये तो निश्चित रूप से ये नहीं, केवल एक ही कारण है कि आपके कृपा के कारण आपसे भगवान इतने रिझे हुए थे, तो आपके पोता है, आप उनको खूब लाड़ प्यार कर, इसी कारण वहां बन गए, हार करके वहीं खड़े रहे से कुछ नहीं, ये तो आपके महान, आप अभी भी इतने हो गए पर भी फिर भी भगवान को इतने भजन कर, और केवल आप नहीं, आपने भगवान जो मुक्ति दे रहे थे उनको छोड़ते राज्य पद दिए, राजा बने, राजा बनने का अपना क्या विचार था, आप बोल रहे थे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ। बोले क्यों, बोले इतने लोग दुख पा रहे हैं, उनको छोड़कर मैं अकेला चला जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, तभी से आपके कृपा का परिचय प्राप्त हुआ था, आपने कितने असुरों को सुरों को कितने को उद्धार किया, आपका जो प्रीचिंग मूवमेंट है कैसे प्रीचिंग किए, तब उपनिषद था नहीं, तो प्रहलाद जी कैसे कर रहे थे, बोले आप भगवत नाम कीर्तन करके जब रोते थे, जो आपका सात्विक विकार होता था, जो आपको दर्शन करता था, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता था, आपके रूप को दर्शन करते ही उनका हार्ट मेल्ट हो जाता था, बड़े बड़े असुरों का, और बाकी अच्छे आदमी के क्या बताएं, आपको दर्शन करके, नाम करके, कीर्तन करा करके, उपदेश दे करके, प्रसाद दिला, कई उपाय से कई लोगों को आपने संसार को उद्धार किया, मुक्ति विमुक्ति पद दान दे दिया आपने, ऐसे भक्ति दिया आपने संसार को उद्धार कर, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जैसे तो आप जैसे महान, ऐसे तो मानना तो पड़ेगा, मैं सच मुझे पता नहीं था, इतने दिन के बाद आया, मेरे कारण जैसे आपने इतने सीरियस डिवोटी बन गए, इतने भगवान की कृपा को प्राप्त किए, ये भगवान को पूरे बस में करके रखे हैं आपने, यहाँ तक कि भगवान की साक्षात उनके धर्मपत्री लक्ष्मी हट गए, ब्रह्मा हट गए, शिव हट गए, गरुड़ आदि पार्षद हट गए, उनसे बढ़कर आप, ओहो हो प्रहलाद, धन्य हो आप, ऐसे कृपा पात्र है, मैं भी आपके संपर्क से धन्य हो रहा हूँ, आप मेरे ऊपर ऐसे कृपा करें बेटे, मेरे बेटा प्रहलाद, अब ऐसा कृपा करो, मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ, क्या डिसाइड किया, अब घर नहीं जाऊंगा, घर तो मेरे है ही नहीं, बोले दक्ष का साप मुझे लगा, दक्ष ने मुझे अभिशाप दिया था कि घूमते रहूं, को टिक ना पाऊं दो दंड कहीं, हमेशा घूमते रहूं टिक नहीं पाऊं, तो दक्ष साप को आपके कृपा के प्रभाव से दक्ष साप नाश हो जाएगा, दक्ष के साप काम नहीं करेगा आपके कृपा के प्रभाव से, तो मैं आपके पास में ही रहूंगा, बस कहीं नहीं जाऊंगा, बस आपके सानिध्य में बस चाहता हूँ, ये कृपा कीजिए, बस आप जैसे भजनानंदी महात्मा साक्षात कृष्ण के कृपा पात्र है, उनके संग पाने की बड़ा बड़ा इच्छा है, आप ये कीजिए, दक्ष साप को रद्द करके यही मुझे कुटिया बना दे, आपके पास आऊँगा, ऐसे कहिए, बस मोर यही अभिलाष, अब बहुत हो गया, बहुत घूम घाम कर ड्यूटी कर लिया, अभी आप जैसे कृपा पात्र कहाँ मिलेगा मुझे, आपके संग अभिलाष है, यही आप कीजिए। जब नारद जी इसे कंटिन्यूअस बोलते जा रहे थे प्रहलाद बैठे थे चरण में, उनको असहन हो गया, सहन नहीं कर पाए प्रहलाद, सहन नहीं कर पाए, उठ करके मुंह नीचे करके रो करके बोले गुरुदेव आप केवल इसे बोलते ही जाएंगे ना, मेरे को सुनेंगे, कुछ तो सुनिए, आप इतने बड़े प्रभावशाली भक्त है, समझदार है, एक्सपीरियंस होल्डर है, आप ऐसा कहते हैं? नारद जी बोले बेटा प्रहलाद क्या ना सोची तो सही गुरु जी, ना क्या सोचू ना सुनो मैं बताता हूं, अगर मेरे बात में एक पॉइंट निकाल दें कि झूठ ऐसा नहीं है तब मैं मान जाऊ, मुझे तो चांस दीजिए। आप ऐसे बोलते चले रहा है, मैं निलज्ज जब इसको सुन रहा हूं उठ करके चला जाना चाहते, लेकिन गुरुदेव से चरण बैठा हूं क्या करूं, आप ही ऐसे बता रहे। तो मेरे खेद बोले प्रहलाद बोले मेरा इतनी बड़ी दुर्भाग्य कि गुरु मेरे प्रशंसा कर रहे हैं, बताओ बिना चेक किए मुझे बोलते चले जा रहे हैं, मेरा क्या दुर्गति होगा, हाय हाय गया मेरा तो सारे तीन कुल नाश हो जाएगा। आप ही मुझे वैसा करेंगे, रक्षक जब भक्षक बनेगा तो क्या होगा, आप ही उसे फुला पुरे बढ़ाते मुझे। तो नारद इस प्रकार सुन करके रो रो करके लज्जे में भीत होकर जब नारद प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के इसे अनुनय बिना किए तो नारद जी चुप हो गए। तो बताओ क्या बात कर रहा है, ये मैं अकेला नहीं बोलता, पूरे हायरार्की से सुनकर आया हूँ, सभी ने बताया, आप क्या दलील देता है ना, सुनिए सर मैं बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए फिर विचार कर कहिए। बोले आपने जो बोले कि मैं कृपा के पात्र हूँ भगवान, गुरु जी आप ही नहीं बताइए, आप मुझे कृपा का पात्र का जो प्रमाण बताए क्या कि मैंने बाल्यकाल से इतनी भक्ति किया, मेरे पिता ने मुझे कितने अजस्र विपद दिए, कितने कितने बड़े मुझे प्रयास के मारने के लिए कितने कष्ट दिए, सबको सामना कर लिया और असुर बालकों को उपदेश दिया, उपदेश देकर उनको भक्त बना दिया। बोले गुरु जी आप ही बताइए, बचपन में जो भक्ति होता है वो क्या उस भक्ति माना जाएगा, कोई आचार्य मानेगा, कोई 5 साल का लड़का उसको माला पकड़ा दो कोई बोलेगा कि भक्ति कर रहा है, ये सो बटल है ना, नहीं बचपन में बुद्धि ठिकाना नहीं, अस्थिर बुद्धि है, चंचलता है, इसमें बच्चे में क्या होते गुण होता है, कोई देखेगा चाचा मामा सब तो वो बोला मैं टांग करूंगा, सब ऐसे करते मैं भी ऐसे करूंगा, उसे पता ही नहीं ऐसा क्या होता है, वो तो ऐसे वीडियो लेकर घूमगा, बोला सब घूमते मैं भी घूमूंगा, उनका ये चंचल स्वभाव के कारण होता है, लेकिन एक बुद्धि स्थिर है, आप तो जानते हैं। बाल्यकाल के स्तुति बालावस्था क्रीड़ा सकता, बालक अवस्था में खेल कूद में रहते हैं और ये इसको एक खेल समझते हैं, खेल समझ करके उसको लेकर के मान लगे तो आप उनको भक्ति समझ रहे हैं, आप इतने मैच्योर्ड पर्सन है, बालकाल की जो भक्ति एक भक्ति है, बाकायदा सही बात था। बोले आप बोलते हैं कि मैं बालकाल में जो मेरे क्लासमेट को उपदेश किया, क्या उपदेश किया, एक तो असुर कुल जाते हैं ये तो दुष्पंडिता ही है, बोले असुर लोग को अच्छी तरह से पता है, वैसे पता नहीं भक्ति शास्त्री कोर्स किए होंगे कि क्या पता नहीं, तो उन्होंने बहुत पंडिता दिखाते हैं, आत्मा और अनात्मा को बढ़िया विवेचन करते हैं, आत्मा का स्थिति को निर्णय कर लेना ये अनात्मा है ये आत्मा है, तो आत्मा को ब्रह्म को निर्णय कर लेना क्या भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। बोले भक्ति के विरोधी जो है जिनको मायावादी कहते हैं ये तो हमसे बढ़िया ब्रह्म निर्णय करेंगे, आत्मा निर्णय करेंगे, आत्मा का गुण लक्षण ब्रह्म का लक्षण हमसे कई गुना बढ़िया करेंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे। बोले आप उसको आप जैसे मैच्योर पुरुष भक्ति कैसे कहेंगे उसको, वो कोई भक्ति का परिचय है, आत्मा अनात्मा निर्णय करना तो भक्ति नहीं है। और आप जो कहे कि मेरे पिता ने मुझे कितने विपद दिए कितने कष्ट दिए मानने के मैं सहन कर ले, कोई कष्ट को सहन कर लेना इसकी भक्ति कहेंगे, अरे कष्ट को सहन कर लिया, विकल होकर के मुझे मार पीट कर रहे थे, विकल होकर प्रभु को चिल्लाया और तो कुछ नो ऑप्शन थे नहीं हेल्पलेस होकर के, तो प्रभु के स्वभाव ही इतने कृपालु है उन्होंने मुझे बचा देते थे, तो इसी की भक्ति क्या हुआ, इसमें क्या बात रही, इसी ने बचा दिए। बोले नहीं, एक बार जो समुद्र किनारे आपको आपके पिता ने पर्वत के चोटी से लेकर फेंक दिए समुद्र में, भगवान ने आपको गोद में उठा कर लिए थे। नारद जी ने बात कहे तो प्रहलाद जी उसको काटते हैं, बोले हाँ आप जो बात करें मुझे तो सपना लग रहा है, एक बार पिताजी ने आदेश किए नहीं उठा कर फेंक दे उसको मार दो समुद्र में पटका दो जाकर, वो हिमालय की चोटी में एवरेस्ट में ले गए, लेकर वहां से मैं बिल्कुल छोटे 5 साल के छोटा सा बालक था उसको उठाकर बधिकों ने मुझे फेंक दिया समुद्र में, हम लोग अगर ऊपर उठा के लेते लेते हम हार्ट फेल हो जाएगा, फेंकने तक तो टिकेंगे नहीं ऐसे हम साहसी है, लेकिन उसको लेकर गए, लेकर के उनको ऊपर से चोटी से फेंक दिए अकेले। लेकिन बोले मुझे तो, बोले आप तभी भी कितने प्रसन्न चित्त होकर गए। बोले क्यों चित्त हो, क्योंकि जैसे कोई छोटे बच्चे को, कभी कभी आप लोग करते हो ना, जैसे पिता की माता छोटे बच्चे को खेलते खिलाते समय ऐसे फेंक देंगे ऊपर में, नीचे हाथ फैलाते हैं आ जाएगा, तो बच्चा फिर और एक बार करो, अरे ऐसे कहेगा ना, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, मुझे और एक बार फेंको, और एक बार करो, तो ऊपर उठा देंगे, ओ लो फिर ले लेंगे हाथ, बोले और एक बार करो। तो ऐसे जैसे बचपन का खेल जैसे मन में इच्छा होता है, तो ऐसे क्योंकि मैंने देखा मेरे पापा हाथ में लेकर बैठा, पापा माने नरसिंह देव, बोले भगवान कृपा सिक्त होकर के ऐसे गोद फैलाकर बैठे, उनको जब मैं नजर पड़ गया तो मुझे खुशी होगा, तो इससे मेरा क्या गड़बड़ी है, उन्हीं का काम था, उनके उन्होंने मदद करने के लिए, बेचारा असहाय है, कोई माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो इसलिए वो थोड़ा मदद की, उनके स्वभाव ऐसा था, मेरा कोई खूबी नहीं उसमें। और आप जो कहे कि मुझे भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा लक्ष्मी शिव शंकर देवतादि को सब को छोड़ करके मुझे उठा करके गोद में बैठाए, करकल स्पर्श दिए, मेरे मस्तक मेरे हाथ रखे, मुझे चाटे, मुझे सूंघे, मुझे इतने लाड़ दुलार किए। बोले हे गुरुजी, कई लोग तो उसको माइक मानते हैं, कई लोग लीला मानते हैं, आप जैसे पहचान हुए महापुरुष तो उनको भगवान के स्वभाव मानते हैं, और सच बताऊं गुरु जी मैं तो उनको सपना ही मानता हूं। बोले कैसे, बोले जो मायावादी लोग होते हैं जो ज्ञानी है वो बोलते हैं कि परम ब्रह्म में इस प्रकार के प्रयास हो ही नहीं सकता, ऐसे छोटे बच्चे को प्रेम करना ऐसे कुछ ना, बोले ब्रह्म में इस प्रकार के चेष्टा संभव नहीं हो सकता, बोले ना ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए बोलते तो माया है, ये माइक मानते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं तो ये कल्पना प्रसूत है कि लीला मात्र है, उसमें कुछ नहीं। और आप जैसे महापुरुष का कहना है इस बात को, ये तो भगवान की एक विशेष गुण है, स्वभाव क्या, अति भक्तवात्सल्य परस्नेह कातरता, दूसरे छोटे बच्चे को हेल्प करने के लिए कातर होकर भगवान आ जाते हैं, ये भगवान के सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव वात्सल्यता ये जो स्वभाव है, तो इस कारण से भगवान ने किए। लेकिन गुरुजी सच बताऊं मैं तो मानता हूं ये सपना था। बोले क्यों सपना, बोले ये तो केवल थोड़े समय के लिए था, मैं तभी छोटा ही था, उम्र मेरा छोटा था, मेरा याद भी नहीं मुझे प्रभु उठाए थे चाटे थे, मैं भूल ही गया, थोड़े समय से अब 10-5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए उठा दिए, आधा घंटे के लिए उठा लिया, मैं तभी छोटा था, उठा करके बस मैंने अभी तक ध्यान में आया तो फोटो भी नहीं देखा मन का उनके, मैंने मुंह को चेहरा को ढंग से देख भी नहीं पाया था, थोड़ा सा उठाकर चाट चूट कर रख दिए, ये तो थोड़ी समय के था। बोले इसको कृपा माना जाएगा, कृपा अगर होता निरंतर होता चिरस्थाई होता, एक बास आया और गया एक कृपा है, ये तो उनका स्वभाव था, इस प्रकार लाड़ प्यार कर दिए। मैं तो उनको सपना मानता, जैसे सपने में आप लड्डू खाए, सुबह उठ करके बोले मैं लड्डू खाया, तो माना आपने लड्डू खाया, कहाँ टेस्ट तेरा, तो इसे स्वप्नवत में मान रहा हूँ कि प्रभु जी ने मुझे उठा के इसे लाड़ प्यार किए चाटे, ये तो ना मैं ढंग से हृदय भर के उनको देख पाया, ना उसको अनुभव कर पाया, ना सुख को बचपन में शिशु अवस्था में कुछ क्षण समय अल्प समय के लिए थोड़ा कर दिए, अगर सचमुच कृपा करते अभी मुझे करते, इसके बाद में कितने मैंने प्रयास किया कहाँ, फिर कहीं फोटो भी नहीं आता, मैं तो बस विग्रह पूजा करता हूँ, वो प्रकट में फिर गए, तो मैं सपना ही मानता हूँ, बचपन हट का ये सपना एक था ये सपना, तो उसको कैसे भक्ति मानते हैं। हे नारद जी आप ही मुझे सिखाते थे, भक्ति तो इसी को कहते हैं सेवा ही भक्ति, भज धातु से भक्ति संपन्न होता है, भज सेवायाम सेवा ही भक्ति, मुझे सेवा कहाँ कर पाए, मैं तो दुख दारिद्र्य विपद के कारण डर के मारे केवल स्मरण मात्र किया चिल्लाया, और अभी तक मैं स्मरण मात्र करता हूँ, मुझे दुनिया में लोग पत्नी स्मरणांग करता हूँ, स्मरण मात्र कर पाता हूँ, सेवा तो अभी तक मैं कर नहीं पाया, सेवा सौभाग्य मेरे भाग्य से हुआ ही नहीं, तो आप ही के भाषा में बताइए आप भक्ति के आचार्य, एक भक्ति माना जाएगा। जो सेवा नहीं किया प्रभु का, भक्ति क्या, बोल याद करता हूँ मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए मुझे तकलीफ मिलता है, प्रभु प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऐसे पुकारना स्मरण करना एक भक्ति है। भक्ति का अर्थ है प्रभु की प्रेममय सेवा, सेवा तो मैं किया ही नहीं। हनुमान देखिए, हनुमान जूनियर डिवोटी है, मैं सीनियर हूँ। हाँ बोले मैं सत्यजुग का हूँ, वो पूरी बाद में आया त्रेता में, क्वाइट सीनियर जूनियर मेरे हिसाब से। और वो आया और अरे मैं तो असुर कुल था, हाथ पर था, राजा था, सब था, वो तो बंदर ही था। और बचपन से उनको ये कृपा मिला कि डायरेक्ट भगवान के सेवा मिला, देवताओं की कृपा से सिक्त हो करके ऐसी सामर्थ्यवान हुआ और भगवान से मिला तो जिस दिन से उसी दिन से सेवा से नियुक्त हो गया। ये है भगवान की कृपा, उनको बानर होते हुए सेवा का सुयोग दिए, अभी भी सेवा में लिप्त है। दस्य भक्ति का आचार्य है, और मैं अभी भी याद करता हूं बैठ करके, सेवा सेवा के मुझे मिला नहीं अब तक, एक ही भक्ति है। अगर भक्ति मुझे भगवान कृपा करते थोड़ा सेवा का चांस देते, नहीं किसी प्रकार के सेवा के मुझे सौभाग्य नहीं मिला जो जूनियर डिवोटी हनुमान को मिला। नहीं भगते हो और ट्रेनिंग कोर्स ही पूरा नहीं किया ना, क्या बोलते पीबीटी ना एमबीटी वो भी नहीं किया। आप कहते हैं, और आप जो कहते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किए और मेरे से हार के रहते हैं, मेरे पोता बलि को मेरे कारण से इसे किए, बोले हे गुरुजी ऐसा बात नहीं, ऐसे बात नहीं है। बलि को तो उनको मांग कर लेना ही था, क्योंकि इंद्र को देना था, उनको इंद्र को देना था, इसलिए बलि के पास आए। और बलि ने शुक्राचार्य की सेवा कर रहा था, मेरे प्रभु का इस स्वभाव है जो ब्राह्मण के सेवा करता है, दान दक्षिणा देता है, उनसे झगड़ा नहीं करते हैं, तो इसलिए बलि ब्राह्मण का शुक्राचार्य की सेवा कर रहा था, इसलिए बोले उनसे झगड़ा नहीं करूँ, युद्ध नहीं करूँगा, फिर कैसे मांग कर लाना पड़ेगा, झगड़ा कर नहीं ला पाऊंगा तो राज्य उनसे लेकर जाऊँ, तो इसलिए मांग कर लेने के लिए आए, तो इसलिए ब्राह्मण बनकर आए। तो आए तो चीटिंग किए, मांगना था भाई अनेस्टली मांग करके लो, बोले भिखारी बनकर आए और सरासर दिन दहाड़े चीटिंग किए, देखा है मेजरमेंट स्केल कुछ सैंपल कुछ और देखा है, काम कुछ और किए, हाँ सभी के सामने चीटिंग किए, चीटिंग करके उल्टी मार पीटे उसको, डांटे बोले तू झूठा कह रहा। आप छिन छान के तो सब ले गए, उनको सूत्रलोक भेज दिए। आप बोलते हैं गुरुजी मेरे सूत्रलोक के गेट कीपर बन करके प्रभु खड़े हैं, बोले सच बताऊं और गेट कीपर क्यों बने, बोले क्यों गेट पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि बदमाश मेरे पोता बलि फिर जाकर इंद्र के साथ लड़ाई ना करे, उसको बांध कर रखे तो गेट आउट नहीं हो जाए, बाहर ना जाए, फिर जाए बदमाशी करेगा, इनसाइडर हो, इसलिए खड़े हैं कि बाहर जाने नहीं देंगे उसको, इसलिए खड़े हैं ना कि दर्शन देने के लिए। ये दर्शन देना तो केवल बहाना, असली उद्देश्य है कि उनको जग कर छके खड़े कि बाहर ना चले जाए, बंधन से मुक्त ना हो जाए, रहो जब तक इंद्र रहेगा इस मनोन्तर तक, तुम गेट इनसाइड बाहर नहीं जाए, जाने से फिर उनका सा झगड़ा करेगा। आपने भाई के काम, आपने भाई इंद्र का काम करने के लिए यहाँ सामने पर खड़े हैं, उनको बाहर जाने नहीं देते हैं, इसीलिए खड़े एक सिक्योरिटी में खड़े इस कारण से बलि को अब तक बाहर जाने नहीं देते। बोले कैसे, बोले एक बार रावण आया था, एक बार रावण आया बलिपुर में, तो आ रहा था तो रावण का रावण महाअहंकारी था, अति दर्पी था, तब जा रहा था तो वो गेट पर खड़े थे, वो गेट गुरु नहीं मानता था, वो बोले नहीं जा सकते हैं, एक ही सस्ता हमारा कनेक्शन है, हमारे वंश के लोग है, चाचा काका था, वो जो रिलेशन निकाला, बोले ऐसे नहीं जा सकता। और जबरदस्ती रावण जा रहा था तो भगवान ने एक किक मार दी उसको, एक पदस्पर्श के किक मारे, वो कई सौ जोजन उड़ करके चला गया आउट, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी उन्हें डिसाइड नहीं कर पाया कहाँ चला गया भाई उसको उड़ा दिए उसको यहाँ से, ठोकर मारे थे उसकी। बोले ये जो रावण को ठोकर मारे थे किस लिए, बोले आप बोलते हैं कि प्रहलाद जी कहे कि वो भी सभी समय नहीं रहते गेट पर, सब सब नहीं रहते। जब मैं सुना कि रावण आया था उसको ठोकर मार, ना रावण को ठोकर मारे क्योंकि रावण बदमाशी करके बलि को छोड़ देता, बलि को मुक्त कर देता, फिर भक्ति बलि जाकर इंद्र के साथ झगड़ा करता, तो इसीलिए बोले कि जाकर गड़बड़ करके रावण को गेट अपो वहीं से उठा दिया उसको। अब वो कार्य अनुरोध, जब ड्यूटी कुछ काम जरूरत पड़ता तब आ जाते हैं, नहीं हमेशा नहीं रहते। रावण को भगाना था इसलिए आ गए, उस बी के मार के फिर चले गए, कहाँ रहते हैं। बोले अगर गेट पर होते तो आप ही बताए, आप ही बोल लेना मैं नमीशरण में गया था, अगर वो गेट पर होते तो नमीशरण क्यों जाता, हे रहते नहीं उधर, नाम के मारे में रहता हूँ, उनका जब काम पड़ेगा तब आ जाते। अब उनको पता चला रावण आ रहा है, आकर पहुँच गए उसको मार के उड़ा दी फिर चले गए, वो नहीं रहते इधर हमसे। वो यही रहते तो मैं जाता नमीशरण उनको ढूंढने के लिए, वो नहीं रहते, उनको पता नहीं कहाँ रहते, पता भी नहीं कहाँ रहते। अब एक बार बोले कि नारद जी बोले नहीं दुर्वासा भी एक बार देखा हुआ था ना, दुर्वासा जी को जो देखा हुआ, बोले एक बार द्वारका वासियों को बड़े विपद पड़ा, असुर लोग बड़े तंग किए, तो उन्होंने दुर्वासा जी को बुलाकर प्रार्थना की और ठाकुर जी शायद हम सुने हैं सुतल में सुतल लोक में हैं, बलि के दरवाजे पर थोड़ा बताइए यार हमको मदद करेंगे। तो दुर्वासा जी उनके बात सुन करके सुतल लोक आए बताने के लिए, बोले उनको भेंट किया, आप बोलते नहीं है करके, बोले ये तो आप मुझे बताओ गुरु जी प्रभु कहाँ नहीं है, कौन सा जगह है जहाँ पे प्रभु नहीं है मुझे बताओ। सूत्र लोग बताते कहाँ नहीं है बताओ। नारद जी चुप, आप सर्व विद्यमान है ना, नहीं अल परवेडिंग है तो सही ना, तो फिर अतः फिर जिसका उत्कट अभिलाष है उत्कट इच्छा है दर्शन का, उनको तो कहीं भी दर्शन हो जाएगा। दुर्वासा जी का परम विश्वास था कि सुतल पर गेट पर भगवान है, तो इसी परम विश्वास के कारण उनको ही दर्शन दे दिए। उनको तो किसी को कहाँ पे परम विश्वास हो जाए तो उनको ही दर्शन हो जाएगा, सर्वत्र ही होते मौजूद है, सब विभूत तो है सर्वत्र है, जिनको परम विश्वास हो जाए वहीं पर उनको दर्शन हो जाए, तो उनके कौन से बड़ी बात है। भगवान के वासस्थान होना उसमें भगवत प्राप्ति इसको तो माना नहीं जाएगा, एक कारण नहीं है। भगवान के रेसिडेंस है तो रेसिडेंस इसमें क्या होगा, इसमें भक्ति से क्या तलुकात है। भक्ति इसको कहा जाएगा कि प्रबल इच्छा भगवत प्राप्ति के लिए भगवत सेवा के लिए उत्कट इच्छा हृदय में हो तब उसी की भक्ति कहा जाएगा। यही से तथा नहीं मेरे तंत्र तथा नहीं, भगवान आते हैं हम बोलते हैं यहाँ रहते हैं, रहते तो रहते हैं इसमें क्या है, सब जगह में रहते हैं यहाँ भी रहते हैं, तो इसमें भक्ति है करके क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं भक्ति, क्योंकि उत्कट सेवाभिलाष नहीं है तो मेरे भक्ति क्या है। तो इसलिए हे गुरुजी आप जो कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा है आप ही बताइए, अगर कृपा होता भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से, शास्त्र प्रमाण है कहते हैं कि जस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ये भगवान के साक्षात मुख निशुद्ध वाणी है, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ सारे धन संपत्ति हड़प लेता हूँ उसको, कहते हैं ना भगवान ये भगवान। और बोले मैं तो उसी दिन से डिसाइड कर लिया जिस दिन मेरे बाप को मार करके मुझे राजा बनाए, मैं समझ लिया मैं कृपा के लेस मात्र ही मेरे ऊपर नहीं। बता भगवान जो खुल्लम खुला बोलते हैं मैं जिसकी कृपा करता हूँ उनसे सब ले जाता हूँ, तो मुझे राज्य संपत्ति दे दिए, ये कृपा है आप ही बताइए। नारद जी बिल्कुल सीरियस बात है, तुझे कोई एक पॉइंट काट्य बोला अगर मेरे से कृपा करते ये झामला मुझे हार दे। बोले असुर संग एक तो बचपन से मेरा बिगड़ा हुआ था, असुर कुल में जन्म हुआ था, पिताजी इतने इसे किए बदमाश थे, हमेशा आंटी पार्टी थे भगवान के, और वो भी बचपना समय से अभी मैच्योरिटी भी नहीं हुआ था मुझे राजा बना दिए उसमें, और उन्हीं के परिवार में रहा, उन्हीं के बनाए हुआ खाना खाया, हाँ ना खाना शुद्ध है ना आहार विहार ना संग कोई शुद्ध नहीं हुआ, उन्हीं के साथ में अभी तक रह करके मेरे बुद्धि अभी भी अशुद्ध है गुरु जी, अभी तक मैं शुद्ध नहीं हो पाया हूँ, क्या कहूँ अभी तक मैं रोता हूँ, कब प्रभु की कृपा होगा, कब मेरे अंदर शुद्धता होगा, अभी तक वही परिवेश में रहा, सत्संग मिला कहाँ, वही उन्हीं के अंदर तो रहा मैं, असुरों का जो स्वभाव असुरों का राजा बनकर था ना, और अभी भी असुर को छोड़ा नहीं, मेरे पोता भी देखो बदमाश है, कई बार इंद्र के साथ लड़ाई किया, अब उन्हीं के साथ रहता हूं, इसी को आप मानते भक्ति, भक्ति तो सत्संग में रहेगा, कहां मेरे संगत का ठीक है ना, आहार विहार संगत कुछ भी नहीं गुरु जी, आप कैसे बोल दिए कृपा का, कौन सा पॉइंट में वैलिडिटी मुझे बताओ, एक भी पॉइंट मुझे बताओ, मेरे कृपा का लेस कहां है मेरे ऊपर? कहां लेस? कृपा तो गुरु जी, जिनको भगवत सेवा के सौभाग्य प्राप्त होता है वो है कृपा का। अब कहां भगवत सेवा और कहां मैं? पूरा इतनी लंबी उम्र बीत गया, मुझे नहीं मिला, मेरे परिवार में किसी को नहीं मिला। अब कुछ उनको बचपन से डर के मारे पुकारा था, इसलिए प्रभु इतने कृपालु है तो कई जन्म तक प्रोटेक्शन दे दिए, ये कोई भक्ति है? भक्ति तो भगवान से, भक्त जो है वो तो भगवान से कुछ भी नहीं आशा करता, पूरे जोखिम उठाकर भगवान सेवा करने जाएगा। मुझे तो सेवा चक्कर नहीं मिला अभी तक, हेल्प मी इसमें पड़ा, मेरे पोता नाती से वही हेल्प चक्कर में पड़े हैं, बदमाश करेंगे, बदमाशी करेंगे और सार 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 प्लीज हेल्प मी, ये की भक्ति है? ये तो मस्ती है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कृपा के पात्र हूं? कैसे कह सकते हैं? ये असुर गण के संग में रह करके बलि घर तो ऐसे हो सकता? आप तो नारा जी मुंह बंद चुप, बिल्कुल प्रमाण कर दिया है किसी प्रकार से। तो बोले बेटा तो फिर कृपा प्रभु के किसका पर है? नहीं कृपा होता है ना गुरु जी, सच मुझे कृपा चाहते, मैं अभी बार बार बता रहा हूं, आप ही लोग में सब जानते हैं, भगवत कृपा उन्हीं को माना जाता है जो भगवत सेवा में लगे हैं, भगवत सेवा संलग्न है, वही भक्ति करते हैं, वही भगवत कृपा है। और ये देखिए हनुमान उनको मान, दस्य भक्ति का आचार्य है वो, जिस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हैं। कहते किस प्रकार लगे हैं? बोले देखो उनका जब जन्म हुआ था तभी से उन्होंने सुबह हुआ सूर्य को देखे, बोले ये तो अपुल है, कश्मीरी अपुल समझे लाल लाल, और वो खाने के लिए दौड़े, खाने के लिए दौड़े, अपुल खाऊंगा, इंद्र देखा है तो निकल जाएगा, सूर्य को निकल जाएगा, संसार नाश हो जाएगा। तो इंद्र ने वज्र मारा, वज्र मारा तो उनको हनु हाड़ तोड़ गया, इसलिए नाम हनुमान पड़ा। यहाँ पे जो वहाँ से इंजरी हो गया और गिर करके पड़े सेंसलेस होकर के, तो उनके पिताजी पवन देव बिल्कुल स्ट्राइक कर दिए, बोले स्ट्राइक हम नहीं काम करेंगे। अरे सबका सांस रुक गया, अरे क्या होगा हमारे बेटा को ऐसे मार देता, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे देवराज आकर के बोला प्लीज एक्सक्यूज मी, हो गया गलती हो गई, इसे सूर्य खा जाता है, इसे करता ना यार, समझाने या मार दे उनका इंजुरी है। तो उनको एम्बुलेंस लेकर गए, हॉस्पिटलाइज किए, सब ठीक ठाक किए, जो किए, सारे भवन देव भी स्ट्राइक नहीं छोड़ रहे थे, सारे देवता उनकर हाथ जोड़े, बोले क्या करें, तो सभी ने उनको जीवदान दिए, सारे आशीर्वाद दिए, सब अपना अपना वरदान दिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सभी देवताओं के वरदान प्राप्त करके और सर्व सामर्थ्य होकर हनुमान उठे। अब हनुमान ये सर्व सामर्थ्य लेकर गए, गए तो इसके बाद में जंगल में किष्किंधा एक जंगल में भेंट हो गया प्रभु को, देखिए उनका भाग्य। वो तो जंगल में बानर होकर बैठे थे, सखा मृग, उनका कोई घर है ना, कोई किचन है ना, नहीं कुछ नहीं, वो तो खाने वाले हैं इसे। तो उनको भगवान ने ढूंढते ढूंढते सीता अन्वेषण में गए, वहीं भेंट हो गया जंगल में, जंगल में भेंट हुआ प्रभु के साथ। लेकिन हनुमान जी इतने अच्छे थे, प्रथम भेंट में दोनों दोनों को स्वीकार कर लिए, प्रभु ने उनको सेवक रूप में स्वीकार किए और उन्होंने अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिए। बताओ हम लोग को कितने इंटरव्यू देना पड़ता है, 3 महीना बाहर रहना पड़ेगा, फिर चेकिंग करेंगे, फिर इंक्वायरी लेंगे क्या है, घर घाटी कितने प्रकार के सर्टिफिकेट अनुमोदन है ना, नहीं रिकमेंडेशन लेने के बाद फिर भी शायद आश्रम रखेंगे कि नहीं। लेकिन उनको नो रिकमेंडेशन, कोई था नहीं रिकमेंडेशन लेने वाला, प्रभु ने उनको पहचान लिए ये मेरे हैं, और वो भी पहचान लिया ये मेरे हैं। पहली मुलाकात में दोनों दोनों को अपने प्रभु और दास करके मान लिए। अब उसके बाद तो सेवा मिली गया, ऐसे सेवा मिला तो उनको तो वाहन बना करके, उनके वाहन बन गए, उनको ले करके घूमे, उनके आज्ञाकारी बने, यहां तक कि सीता अन्वेषण का सबसे बड़ा अवदान श्री हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का सीता अन्वेषण करने के लिए जो भेजे, हनुमान जी ना होते तो मिलता क्या? नहीं। जब चार दिशा पर सुग्रीव ने भेजे और हनुमान जो दिशा पर गए थे वही दिशा अनुसरण करके लाया। उनको तो जटायु के भाई संपत्ति सबको ब्रेकफास्ट करने वाला ही था। जो दक्षिण समुद्र पास पहुंचे सारे वानर लोग जाकर बैठे। अब हताश क्योंकि ये टाइम लिमिट दिया था सुग्रीव ने, ये टाइम तक एक महीना दो महीना कुछ देर, बोला ये महीना पूरा अगर नहीं हुआ तब सबको मार दूंगा गला काट। अब एक महीना पूरा होने वाला था, आप बोलते हैं इसे जाएंगे क्यों, जाने से मरेंगे और इसे मरते हैं। समुद्र में बैठ करके रो रहे थे, दुख प्रकाश कर रहे थे, मर जाएंगे, अभी तक हमारा काम बना नहीं, अब जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, राजा मारेगा, अब इससे भोजन नहीं मिलता है, वो क्या खाएं क्या करें, दुखी बैठते रो रहे थे। तब नज़र पड़ा संपत्ति का, संपत्ति अब बैठा था दक्षिण समुद्र किनारे के पास। वो आवाज़ सुनकर बाहर आया, देखा दूर से गिद्ध था वो, देखा बोला अरे बहुत दिन से मैं भूखा बैठा हूँ, खा नहीं पा रहा, भगवान ने बड़ी कृपा की, बढ़िया सा लंच आज मिल गया मुझे, इतने सारे वानर, ये मेरा हो जाएगा लंच, पूरा लंच नहीं होगा कम से कम खा तो लूँगा चलेगा। वो इसके बाद सुने बंदर और कतरा, बोले भाई ये भी कोई आ गया हम खाने वाले, लो हम थोड़े देर राम नाम करने वाले थे, वो भी आया खाने वाले, हे राम करने लगे। तो बोले देखो एक तो जटायु आश्चर्य हो गए, राम राम कर रहे हैं। फिर बंदर लोग बोले देखो एक तो इसे बड़ा गिद्ध था जिनको भगवान ने अपने अंतिम समय में उनका दाह संस्कार किया, और ये गिद्ध आता हमको खाने के लिए, हम तो राम के काम करने के लिए आ रहे थे। जब संपत्ति को सुनाई पड़ा तो जटायु उनका छोटा भाई था, तो उनको बोला नहीं ऐसा क्या बात कर रहे हैं, जटायु का नाम लिए कौन किसी बताओ बताओ। जब उनके पूछताछ किया तो उनसे बताया ऐसे ऐसे बात, तब उनको पता चला, बोला मेरा तो रिश्ता दशरथ से है, ये मेरे रिलेशन का ऐसे ऐसे, तो कोई बात नहीं मैं आपको नहीं मारूंगा, और आप सीता ढूंढ रहे हैं ना, बोला मेरे पावर है, यहाँ से 2000 माइल तक मैं देख सकता हूँ, गीत का आई साइट बड़ी पावरफुल होता है। वो बैठे बोले मैं देख रहा हूँ इधर से, वो बैठी है सीता बैठी है, वो पेड़ के नीचे बैठी, मैं दिखाई पड़ रहा है मुझे, लेकिन आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन गलती है कि मैं जा नहीं सकता, मेरे पंख काट दिया गया, मेरे पंख नहीं है इसलिए मैं बैठा हूँ, कई युग से खाना भी नहीं खाया है बैठा हूँ, लेकिन जब पंख काट दिया गया था ब्रह्मा जी की प्रार्थना करता, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिए थे, बोले कभी अगर भगवान के दूत अगर आपको मिलेंगे और आप उनका कुछ उपकार करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपका पंख उग जाएगा। अब मेरा पंख उगने वाला है, आप लोग भगवान राम के दूत हो, आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ और आप मैं सीता के एड्रेस बता दी, अब मेरा पंख उग रहा है, अब मैं आपको क्या खाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा जाकर घूम करके। उसे जटायु का उनको पता चला सब, तो इसलिए संपत्ति ने अपना पंख होगा और ने हनुमान को पा करके चले गए। तो सब बैठे हो तो एड्रेस तो पता चल गया कि सीता जी उधर है, अब जाएंगे कैसे, समुद्र 100 योजन का है, 100 योजन समुद्र पारी करके जाएं तो कौन जाए कैसे जाए, बनर है को फ्लाइट तो था नहीं कि पकड़ के चले जाए, अब जंप करके जाना था, कौन बानर कितनी दूर जंप कर सकता है, कई बोला कि मैं तो इतने कुछ जा सकता हूँ, मेरे साथ सब करके बड़े विचार में पड़े थे। जाम्बवान जी आकर हनुमान को बोले, हनुमान के सामर्थ्य था लेकिन कोई उसको याद दिलाए तब तो करे, तो जाम्बवान आकर खूब उनको याद दिलाया कि आप समर्थ हो कर सकते, तो हनुमान जी तुरंत रेडी हो गए। रेडी हो करके श्री राम का जय घोष करते हुए, श्री राम नाम को स्मरण करते हुए, राम के चरण को ध्यान करते हुए, अब वो जो महेंद्रगिरी समुद्र के अंदर पहाड़ था, महेंद्र पर्वत के ऊपर चले गए, जा करके अपने रूप को इतने विशाल किए, इतने बड़े रूप करके जब जंप करने के लिए इतने उनके अंदर जोश आ गया, बोले मैं एक जंप में कूद जाऊंगा, बोले ये 100 समुद्र को कूद जाऊंगा, ये एक समुद्र क्या है, इतने शक्ति लिए लेकर जब कूदने के लिए प्रयास किए, बोले पूरे धरती कांप गया, वो महेंद्र पर्वत इतने जोर से कांपा कि जितने पशु पक्षी थे सब चित्कार करके भागे, बड़े बड़े पेड़ सब कोई टूट गया, कोई उड़ कर चला उनके साथ में, समुद्र में कई ऊंचाई ऊंचाई लहर उठ गया, पानी उठ गया। इससे भयानक कर्म करते हुए हनुमान जी जो जंप किए, सीधा जंप करके जा रहे थे, अब रास्ता में कई उनको अड़चन आया, सारे अड़चन को सामना करते हुए किस प्रकार लंका प्रवेश किए और सीता के अन्वेषण किए, अन्वेषण करके ढूंढ ढांड करके रावण के महल में गए, ओवरनाइट रात में गए, बोले कि दिन में शायद वहाँ भी लंकिनी की टेक केयर किए करके जा सब कर करके और अंततः सीता को अशोक वाटिका में अन्वेषण किए करके जब वापस आए तब तक बैठे थे वानर लोग, वो सब करके लंका जला करके सब कुछ मार पे कई काम किए थे। अक्षय कुमार को मार दिए, जम्मू मालिक मार दिए, कई सेना को मार दिए, लंका में आग लगा दिए, नाना सर बहुत हाल खराब करके लंका का सीता जी की खबर ले करके और उनसे अपने पहचान लेकर के आए। जब आकर पहुंचे सारे वानर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न होकर के आए। अब सभी ने जा करके वहाँ एक था उनका मधुबन करके किष्किंधा में, यह बहुत बड़ा फ्रूट्स गार्डन था, वहाँ भी जाकर मस्ती में खाए, फिस्ट किए। उनका फिस्ट क्या है, किचन तो होता नहीं वानर लोग का। आप सब तोड़ ताड़ करके सब खा के जो है गार्ड था दधी में उसको भी मार पिटाई करके इंजर्ड कर दिए। तब उनको पता चला जो सुग्रीव के इसे पार्क में आकर बदमाशी करते हैं, बोले कि इसके लक्षण है वानर जब इसे उत्पात करते हैं मतलब कुछ अच्छा काम करके आए, शायद सक्सेसफुल होंगे। इस सिम्टम से पता चलता है सक्सेस हुए हैं। सुग्रीव जाकर भगवान राम को बताया, शुभ लक्षण दिखता है, शुभ शकुन, शायद सक्सेस होकर आए। तो सुग्रीव मिले आकर के हनुमान जी, अगर सब बताया कि कैसे डिटेल कैसे कैसे मिले, सीता को ढूंढे देखे, बातचीत हुआ, सब हुआ इस समय का कर। तब भगवान राम बैठे थे दुख से, उनके पास जाकर जब सुग्रीव ने बताया तो भगवान राम उठ कर कहे, प्रिय हनुमान आकर के ऐसे गले मिले, ऐसे आलिंगन किए और बोले कि मुझे सब बताओ। तो हनुमान जी ने बताया, सारे बताया कि कैसी सीताजी को मिला, कैसे दुख है, क्या है, सीताजी ने बताई थी उनको पहचान। तो इसे बताने के बाद भगवान ने इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, बोले इतने मेरे आज दुख का तू मुझे दर्द मुझे बुझाया। उठ कर बोले मैं क्या तुझे दे सकता हूँ, आप मेरे जितने उपकार किया ऐसे उपकार मुझे कोई नहीं किया था, इतने बड़े उपकार मेरे हृदय की दर्द को तू संतुष्ट किया, इतने मुझे बुझाया। हे हनुमान तू इतने बड़े मेरे उपकार किया मेरे मित्र के रूप में, मैं तुझे क्या गिफ्ट दूँ, मैं तो भिखारी वनवासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये ऋण से मैं चुक नहीं सकता हूँ, तो मुझे इतने मदद किया तो केवल मैं इतना ही दे सकता हूँ। हनुमान आओ मैं एक बार आपके आलिंगन दे सकता हूँ प्रेमार। तो उठा करके जब भगवान ने बिल्कुल उनके रोमांच हो गया, श्री राम के शरीर में बिल्कुल सारे रोम खड़े हो गए, आंख से धार धार आंसू बह रहे थे, हाथ उठाकर गदगद कंठ होकर भगवान राम आए, हनुमान आओ बस इतना ही मैं कर सकता हूँ, एक बार आप गले मिल सकते हैं, बाकी तो आपके पास हमेशा के लिए ऋणी रह गया, तू मेरे से जो उपकार किया। इस बात को देख प्रभु के इस प्रकार स्वरूप, इस प्रकार बात, इस प्रकार भाव को देख कर हनुमान इतने उनको लगा, इतने भावित हो गए, बोले प्रभु ऐसा आप क्यों कहते हैं। ऐसे कह कर तुरंत दंडवत उनके चरण में गिरे, ओ चरण पकड़ कर बस मेरे वही स्थान रहिए, मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैं तो आपके चरण में स्थान दीजिए, सेवा के सौभाग्य दीजिए। ऐसे कहकर चरण पकड़ करके हनुमान पड़े रहे, तो भगवान उनको उठा कर गले में लगा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को आंसू से भिगा रहे थे। ये जो मिलन, उस मिलन को भगवान शंकर कहते हैं, इस मिलन को केवल याद करने से हमारा उद्धार हो जाता है, ऐसे राम हनुमान मिलन हुआ था। तो ऐसे सौभाग्य था हनुमान के, ऐसे सौभाग्य था, और इतने बड़े अद्भुत कर्म करके आए, कभी सुरसा और नाग माता और क्या था उनका नाम, लंकिन नहीं, समुद्र में दो तीन मिले थे ना उनको, सुरसा तो एक था, सबसे पहले सुरसा थोड़ी था, सबसे पहले कौन आया, आप लोग इसको भूल गए, सिंघिका लास्ट में आया, नागमाता सुर से पहले आया, उसके बाद में हाँ यानी तो इतने सारे अड़चन को करके जो करके आया, तो भगवान राम ने पूछे कि हनुमान मुझे डिटेल बताओ, लंका के विवरण बताओ, किसी किसी लंका आपने देखा, किसी सीता जी की अवस्था बताओ, और सुनने के मन नहीं भरा, और मुझे बताओ। पास में बैठा कर भगवान ने पूछने लगे, बोले कि मैंने हनुमान सुना है सुग्रीव अगर बता रहे थे तो आप इतने अशोक वाटिका को बिल्कुल खिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ करके मिटा दिया, चैत्र भवन को मिटा दिया, कई हजार सैनिक मार दिया, उनके लंका के दीवार तोड़ दिया, अरे लंका को जला दिया आग लगा कर, अक्षय कुमार को मार दिया, ये सब किया। जैसे भगवान स्वयं परिषद वर्ग के सामने हनुमान की प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे, हनुमान लज्जित होकर के बोले प्रभु कैसे, मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं तो आपके एकमात्र तुच्छ भृत्य मात्र हूं, मेरा क्या ताकत है कि मैं सब कर सकूं, मैंने तो किया ही नहीं ये सब, मैंने कैसे कर सकता, मेरे अंदर क्या ताकत है 100 योजन समुद्र पार करके जाऊं, मैं तो समुद्र पार गया ही नहीं था, और मैंने कैसे वैसे किया। सब बैठ गए, बोले हनुमान जी झूठ कैसे बोल रहे, अभी तो हम बता रहे थे, फोटो भी लेकर आए थे, व्हाट्सएप पर डाउनलोड हुआ है लंका जला, बस वो बोलते नहीं किए करके। भगवान हंस के बोले प्रिय हनुमान आप नहीं किया ना, ना मैं गया था कहाँ, मैं तो तुच्छ सद आपके वृत्ति मात्र हूँ, मेरे अंदर ऐसी शक्ति है क्या, आप ही मुझे बढ़ाई करते, मैं कर पाता हूँ, मैं कैसे कर पाता। भगवान हंस हंस कर सारे आश्चर्य होकर देख रहे हैं, एक सुखसा था और कौन था, तो फिर बोले भगवान हंसकर बोले अच्छा सीता को तो मिले ना, हाँ मिला, हाँ तो गया नहीं था, मिला कैसे ना प्रभु, मैं नहीं गया था, मेरा क्या ताकत है जाऊंगा, फिर कैसे ना, आपने आपके मुद्रिका भेजा, आप जब भेजा वो तो जाना वाला था, आपके शक्ति संपन्न आपने भेजा सीताजी के मुद्रिका, वो सीताजी के पास जा रहा था, मैं उसमें सवार हो गया बैठ गया, तुम्हें चला गया है ना, वो गाड़ी जा रहा था मैं बैठ गया, मैं चला गया, नहीं तो मैं कैसे जा पाता, वानर हो तुच्छ। अच्छा भगवान हंसने लगे, वो जा रहा तो कहना, तो वो सब प्रभाव अपना दिखाया, जमा और पीठ जो सो किया, आपने भेजा था अपने अपने मुद्रिका को, तो वो तो भगवान राम भेजेंगे, वो तो किया जाकर जो किया सो किया, मैं थोड़ी क्या, मैं तो उनके साथ में चला गया था बस। अब हट कर का बोले अब तो मुद्रिका तो उनको दे दिया ना, सीताजी को दिया हो तो रखे जैसे हुआ, पर आया कैसे, रिटर्न कैसे किया, जब तूने नहीं गया था, मुद्रिका के सहारे चला गया, अब नहीं गया था तो रिटर्न आया कैसे ना प्रभु, मेरा कहाँ से शक्ति है मैं आ पाता, भगवती सीता ने आपने मथामणि भेजे, वो आपके पास आना ही था, माता जी ने भेजे आपके पास, वो तो आएगा, अब मैं उसमें बैठ गया, मैं आ गया आपके पास आपके चरण, तो मेरा उसमें क्या क्या मतलब। देखिए जो सचमुच दास है कितने निराभिमानी है, कितने निरहंकार है, कोई लेस मात्र भी अहंकार नहीं, आप साक्षात प्रभु जब सम्मान करते हैं, बदला करके ऐसे बुद्धि से बताए बात कि प्रभु संतुष्ट हो गए, दोबारा आलिंगन खोले, वाह 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 आप ही भक्त श्रेष्ठ है, एक भी आपने सम्मान को अहंकार को नहीं लेना चाहते ना, मैंने कुछ नहीं चाहते, हमेशा अपने आप को त्रिनादपि सुनी चेन त्रोरपि, इतने दीनहीन इतने दैन्यता मान करके ईश्वर सीखना चाहिए, इससे दीनहीन होकर, तो इसे उत्कृष्ट सेवक जो भगवान को हृदय को बिल्कुल प्रसन्न करते हैं और कोई अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है कि मैं इसे करता हूँ करके, ऐसे हनुमान शरीर के सेवक वो भगवान के कृपा के पात्र हैं, कृपा भाजन है, जो हर प्रकार से तैयार रहते हैं, आज भी तैयार रहते हैं उनके सेवा, ये सेवा सौभाग्य उनको मिला है, और मेरे से जूनियर है, मैं तो कवि से हूँ नहीं, तो हे नारद जी गुरु जी, अगर आप सचमुच किसी को कृपा के पात्र को भेटना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ अब विलम्ब ना कीजिए, यहाँ दक्ष के साथ लेकर के हम मिटाएंगे, मेरे कृपा से रहेंगे, आप टाइम खराब यहाँ मत कीजिए, ये तो मैं ही खुद पढ़ा हूँ, असुर संगत में पढ़ असत संग असत आहार विहार में, आपको इसे क्यों संग में पढ़ेंगे, आप जाइए भक्त संग कीजिए, साक्षात कृपा भाजन भक्त, मैं आप ही जानते हैं मेरे से ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, आप जाकर देखिए उनके संग प्राप्त कीजिए, मेरे से यहाँ पढ़ें। दक्ष के साथ नारद जी को इस प्रकार एक बार लगा था, दक्ष प्रजापति जब सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने आदेश दिए थे प्रजापति को, एक्सपर्ट थे दक्ष सृष्टि सृजन करने के लिए, तो उन्होंने एक सेट पुत्र उत्पन्न किए, 10,000 एक सेट, 10,000 के एक सेट लड़का पैदा किए दक्ष ने, उनका नाम था हरियाश्व, तो उनको बोले बेटो आप सब विवाह संस्कार करके प्रजा उत्पन्न करो, तो उन्हें इस फादर इस डैडी कहकर सब निकले, अब अपने शक्ति संचय करने के लिए और नारायण सरोवर की ओर जा रहे थे तपस्या करने के लिए, और जा रहे थे नारद जी ये बढ़िया ब्याज है यार, एक ही ब्याज 10,000 स्टूडेंट पिचिंग शुरू किए बोले एक ही ब्याज है, एक की इतनी बड़ी ग्रुप है, जाके मिल गए, मिल करके ऐसा पिचिंग किए, नारद जी के पिचिंग तक कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी बेकार हुआ ही नहीं, ऐसे डोज दिए भला एकाध दो वापस आए, 10,000 पुत्रों से एक दो भी घर नहीं आए, फोन भी नहीं किए, सारे गए। तो पिताजी को कैसा दुख लगा होगा बताओ, जब पता चला दक्षे प्रजापति को और नारद जी ने इसे किया करके पता चला हो तो इतने गुस्से हुए, इतने गाली गुलाज के गुस्सा के नारद जी को ऐसे जैसे करो, ब्रह्मा जी अगर समझा जाने तो नारद जी का काम ही ऐसा है वैसे करता, जाने तो छोड़ो क्या करे लेने का, तो ब्रह्मा जी के समझाने पर समझ करके रहे। तो फिर वो अंतव के जो भी कर फिर दूसरा और एक सेट बजा के 1,000 लड़के फिर बजा के जिनको सवलास्व कहते हैं, 1,000 लड़के बजा कर उनको ही बोले बेटो जाओ देखो ध्यान से आप समर्थ बनो और पुत्र उत्पन्न करो, प्रजा उत्पन्न करो, सृष्टि करो, भगवान की इच्छा है। तो उन्होंने भी गए, जहाँ भाई लोग गए थे वहाँ उनके तपचरण करने, और नारद जी वहाँ भी जाकर टपके वो तो वो ताक में रहते, बिल्कुल नेटवर्क हमेशा अन रहते, ऑनलाइन रहते नारद जी, ऑनलाइन जहाँ पता चलता है वहीं सीधा पहुँच जाते। आप पहुँच करके उनको ऐसे कानफूसी किए, ऐसे उनको पढ़ाए, बोले आपके जो एल्डर ब्रदर से अभी आप उसी के अग्रज का अनुगमन करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं, उनको इसी प्रचार कर दिए, वो 1,000 से भला दो एक वापस आते हैं, वो भी 1,000 सा फुल टाइम हो गया। लो आप दक्ष को तो सहा नहीं गया, इतने गुस्सा हुआ, बोला तू मेरे वंश पूरा का नाश करने के लिए उतार हुए और कोई नहीं मिला, अरे मैंने भगवत इच्छा से करता हूँ, तू एक भी भला बचाता है तू कैसे इमाचोड़, खुद तो शादी किया ही नहीं, तुझे क्या पता है संसार के क्या सुख, ऐसे गाली दिए। नारद जी कुछ नहीं सुन, चुपचाप सब सुन रहे थे, खूब गाली दी अपमान किए दक्षे ने, सभी भरी सभा में नारद जी, नारद जी चुपचाप सुन रहे थे बेचारे, सबके बड़े आचार्य होकर के इतने गाली सुने, उस गृहस्थ ने खूब गाली दिया उनको, गाली दे करके इतने गुस्सा था उनको अभिशाप भी दे दिया, बोला मैं तुझे साफ देता हूँ तू प्रिचिंग करता खड़ा हो कोई टिक नहीं सकता, घूमते रहो जा, तेरा ना कोई घर ना बाड़ी कुछ नहीं होगा, तेरे क्वार्टर फाटर कुछ नहीं होगा, घूमते रहो कहीं रख नहीं सकता तुम। नारद जी ने बोले थैंक यू सर कह करके आए, वो इसलिए ट्रैवलिंग प्रीचर है नारद जी। प्रभुपाद जी ने इस भागवत के इस प्रसंग में लगते हैं कि हम लोग नारद की परंपरा में है, इसलिए हमको ये सांप के कुछ अंश लगा है, इसलिए हम ट्रैवलिंग घूमते रहते बोले नारद जी की कृपा ये तो इसलिए नारद जी आज प्रहलाद महाराज को कहते थे जा करके, बोले ये जो दक्ष की सांप मुझे लगा है मैं कहीं टिक नहीं सकता हूँ, हमेशा इधर उधर ट्रैवलिंग में रहता हूँ अनंडान, तो इसलिए आप कृपा करो, आप जैसे महाभक्त कृपा सिद्ध भक्त की कृपा से दक्ष की सांप निरस्त हो जाए, मैं ही कुटिया करके आप संगत बनाऊँ। बोले नारद जी गुरु जी अब ऐसा मत कीजिए, मैंने खुद दुसंग में पढ़ा हूँ, असुर संगत में रहते हैं, यहाँ तो खान पानी पता नहीं किस प्रकार बनता है, कुकिंग जैसे हो तो इसलिए यहाँ नहीं, और आप जाइए पर जो अभी भी सेवा में लगे हैं ऐसे ही करके। तब हनुमान जी के एड्रेस नारद जी को इसे पता था, प्रहलाद जी फिर भी बता दू लेकिन पुरुष वर्ष में है वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो नारद जी ने परीक्षित महाराज कहते हैं माँ, तब नारद जी प्रहलाद से सारे पॉइंट सुन करके कन्विंस्ड हो गए, बाकायदा कहाँ प्रहलाद के ऊपर कृपा है, सचमुच बिचारा मैंने उनको सिखाया पढ़ाया बचपन में लेकिन नहीं हो पाया ना, मेरे को कृपा उनके ऊपर हुआ नहीं, सही में कृपा तो भक्त के ऊपर होता, भक्ति तो सेवा है, तो सेवा अब तक किया नहीं, अभी तक स्मरण तक बैठा है सेवा कहाँ, तो इसलिए बाकायदा हनुमान अब नारद जी ने कन्विंस्ड हो गए कि हनुमान जी साक्षात भगवान की कृपा पात्र है, कृपा सिद्ध भक्त सेवक हैं, उनके सेवा में लगे हुए हैं। तो हनुमान हनुमान कहते हुए जय श्री राम जय हनुमान कहते हुए नारद जी वहाँ से चल पड़े। अब किंग पुरुष वर्ष हनुमान के साथ पहुँच कर क्या करेंगे उसको, कभी जब किंग पुरुष वर्ष जाएंगे कभी आप लोग सौभाग्य से हम फिर साक्षात करेंगे, फिर कभी उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अब आप लोग का भी समय हो रहा है, जल्दी पढ़ाए सब जाने के लिए। अब लगभग 2-2.5 दिन तक सुबह शाम आपको जितने में हमने कर्कश वाणी के द्वारा बोरिंग किया, आपने आपने उदारता से इस अपने कर्कश वाणी को सहन किए, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका ना? नहीं, हाँ जी बोलिए।
समझ आता है कि जो राजी है वो शिव के ऊपर अवतार
बनता है जी,
जो शिव की है। हाँ, जैसे पहले शिव के पास होते
हैं,
पास होते हैं। क्या
डिफरेंस है कि हनुमान है वो सेवा कर रहे हैं, यद्यपि शिव जी ने शिव रूप में भगवान की ऐसे कृपा प्राप्त नहीं किए, एक कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान भर में घर गए, जाकर कृपा प्राप्त सेवा कर पाए। शिव जी के रूप में तो भगवान उनको सम्मान करते हैं, सेवा कहाँ देंगे उसको, ईश्वरता दे दी हनुमान। लेकिन तब फिर बोले कि अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ करूँगा, आप मुझे बोले, तो फिर हनुमान रूप में आए, तब सेवा के सौभाग्य प्राप्त, है ना। तो इसलिए हमको अगर किसी समय में सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्या करने से हम सेवक बन पाएंगे, दीनहीन दैन्य बन पाएंगे, उसको अपनाना चाहिए। भक्ति का अनुकूल जो कार्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। और कुछ
और कोई किसी का?
ये
कल आपका जो तस्वीर सुनाई थी, उसमें हमने बोला था कि शिव जी भी और माँ दुर्गा की मुक्ति जैसी भगवान की कृपा है। लेकिन जो सुना है वो मुक्ति केवल मुकुंद दे सकते हैं, तो किस प्रकार की मुक्ति हो सकता है?
जो मुक्ति मुकुंद दे सकते हैं वही पावर उनको भी दिए थे उन्होंने, है ना।
महाराज इसकी प्रॉब्लम ये भक्ति शास्त्र कोर्स कर रहा
है, इसलिए गड़बड़ी सब है।
ये हनुमान जी नहीं है, हमारे ग्रुप में ही है, तो ये भक्ति शास्त्र कर रहा है, तो ये शास्त्री कोर्स करने में दिक्कत है।
उसको तो हम शास्त्री नहीं कहते, शास्त्री कहते हैं। हाँ जी,
माइक
हनुमान जी दास के आचार्य हैं, तो हम तो मतलब कैसे उस चीज को फॉलो करें, अपने अंदर लाएं कि जो नो इफ नो बट करके या अंदर से
क्या क्या लो
नो इफ नो बट किसी भी सेवा के लिए, और बट नो इफ और बट सोच के कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, चलो कर देते हैं, जो कभी कभी आते हैं हमारे अंदर भी ये बात, हम उस चीज को कैसे डेवलप करेंगे? हम
कभी कभी कौन सा भाव आता है
नहीं, सेवा में जैसे कई बार होता है कि मिली है तो कर देते हैं, लेकिन मेरे पास एक ये प्रायोरिटी भी है, तो सेवा में कोई प्रायोरिटी कोई और नहीं होनी चाहिए, तो वो सेवा मतलब सेवा समझ के कैसे की जाए?
ऐसे बारंबार सुनने से ये भावना जागृत होती है ना, इस प्रकार सेवा के महिमा को अगर सुनेंगे तो आपके महत्ता समझेंगे, फिर गेट दैट एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। नहीं तो सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। ओके, अभी आप सुने करके आपके मन में आया यार व्हाट वी आर डूइंग, आया ना नहीं सबका मन में, अभी सभी जितने सुने हैं ढंग से सभी का मन में हृदय में तो एक उथल पुथल मस्ता होगा ना, अभी हम करके आ रहे हैं ये सर्वण से। किसका
शरणागति के बारे में,
शरणागति के बारे में।
तो उसमें जो हमने शरणागति के दो पॉइंट्स बताए थे, दैन्य और विनम्रता फर्स्ट पॉइंट, तो जो ये डेमिगॉड्स थे इंद्र देवता या ब्रह्मा जी, उन लोगों का तो ये था कि हमारी पोस्ट का भय है या हम आपका अहंकार है। उन दोनों के अंदर तो ये लक्षण नहीं है कि वो भगवान को अपना कृपा पात्र नहीं मान रहे, बट जो भगवान शिव या प्रहलाद महाराज या हनुमान जी, ये तीनों तो दैन्य विनम्रता के उसमें आ रहे। तो हम लोग मतलब ऐसे तो कोई भी भक्त अपने आप को भगवान का कृपा मात्र मानेगा ही नहीं, तो क्या हमें ये स्थिति अपने ऊपर कैसे, इस चीज़ को मतलब कहाँ तक हम पहुँचेंगे इसमें, कि कैसे हमें ना बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि भगवान का कृपा पात्र है कौन है।
तो इसलिए तो सुनना चाहिए ना,
मतलब एक शुद्ध भक्त जो है वो कभी मानेगा या नहीं मानता वो कभी भी अपने आप को।
अब सुनेंगे तो लास्ट मोमेंट में कोई मानेगा तो नहीं पता चलेगा, अभी तो रास्ते में है। नारद जी जब प्रोजेक्ट लिए हैं तो ढूंढ कर निकालेंगे ना, नहीं ऐसे थोड़ी सुन। हाँ अब आप लोग के ऊपर है, कब खत्म करना चाहते हैं।
और ये जो हनुमान जी और प्रहलाद महाराज है, इनके अंदर जो दैन्य भाव आया कि अपने आप को छोटा मान रहे हैं ये भगवान के आगे या और भक्तों के आगे, तो हम लोग भी कैसे इस चीज को।
अभी जो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र ने, प्रहलाद ने जो जो पॉइंट दिए कि हमारा पर कृपा नहीं है करके, इसमें कोई शंका है आपका? सही पॉइंट था ना उनका, नाराज जी भी समझ के बोले तो बात है, प्रूव कर दिए। नहीं विनम्रता भले करे, लेकिन जो पॉइंट दर्शाए, जो काज दिए कि हम कृपा के पात्र नहीं है, उसको किसे विश्वास कर सकते, कि वो प्रूव करके दिखाए कि सचमुच कृपा होता तो यही होना चाहिए हमारा अंदर है, एक एक पॉइंट प्रूव करके दिखाए ना।
पर प्रहलाद महाराज के ऊपर जैसे 5 साल तक उन्होंने करा भक्ति और वो अपने आप को कह रहे कि मैं 5 साल की उम्र भक्ति नहीं हो सकती।
हाँ वो बचपन से क्या बोलते, तो बचपन आता है बोले ना, तो सब अभी थे बोले बचपन आता तो बचपन आता, इसमें कोई सीरियस
तो याद नहीं, आप बताओ
कोई सीरियसनेस है क्या? छोटे बच्चा आपके 4-5 साल का बिट गया टांकर घूमेगा, क्यों बोलेगा कि भगत है तो सो बोले। तो वही तो बोले मैं केवल स्मरण मात्र कर पाता हूँ, बोले भक्ति तो सेवा होता है, सेवा कहाँ किया मैंने, भक्ति अर्थ सेवा होता है ना, है ना नहीं, तो फिर बोले क्या किया मैंने अभी तक नहीं कर। अरे तो सभी आचार्य कहते हैं, जो रूप गोस्वामी ने भक्ति की डेफिनेशन दिए, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन तो सेवा, बारंबार भगवान प्रसन्न करने वाली सेवा, वो कहाँ, वो बिल्कुल ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि कोई अकाट्य व्यक्ति कोई मना नहीं कर सकता, नारद जी स्वयं मानने पड़ा हूँ तो वो समझा देते मैंने ऐसे ऐसे बोले नहीं।
अभी
पहला
सेमेस्टर हुआ
ही
है अभी,
भागवत गीता में भगवान ने कहा कि देवताओं में इंद्र मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, या फिर राजाओं में जो शासक है तो राजा मैं, भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, तो ये सब खुद कह रहे हैं कि मैं खुद हूँ, तो ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है कि ये लोग अपने आप को जैसे भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं हूँ ये सब, लेकिन ये भगवान का कृपा मात्र भी मान रहे अपने आप को, तो ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है।
जहाँ भगवान ने भगवद गीता का 10वां अध्याय कहे वो विभूति योग है, विभूति मतलब उनका जो हर कोई चीज़ में जो श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ हर एक फेज में जो श्रेष्ठ है उसको मेरा विभूति मानो, उसका मतलब वही भगवान नहीं है, बोले जो मनुष्य में जो राजा है राजापन वो तो मेरे ही शक्ति का मेरे विभूति है, नहीं तो राजा कोई नहीं, जितने बड़े बड़े सब चीज़ है जो भी श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठता मेरे कारण है, मेरे कारण श्रेष्ठ मैं नहीं हूँ, आज समझ में। हाँ वो सब भगवान नहीं है, भगवान के श्रेष्ठता के कारण वो लोग सुश्रेष्ठ हो गए, जिसको भगवान श्रेष्ठ कराना चाहे श्रेष्ठ करा देंगे, लेकिन भगवान नहीं है, ये तो विभूति है ना।
एक 5 साल का बच्चा है रोहिणी के अंदर, वो बिल्कुल कंठस्थ है, उसको नर्सिंग आरती वगैरह सब कुछ, ये कुछ उस पर विशेष कृपा है, वो सारा कुछ जानता है और सब कुछ बताता है।
हाँ, कोई नाराज जी हुआ होगा उनको गर्भ में सिखाया होगा सर।
आपके चरणों में साक्षात आपने इतने सुंदर तरीके से जो है हमें ऑपरेट किया और बताया कि हमारी स्थिति क्या है, जो बड़े अंकार के प्रसिद्ध जी है जो अपने को बड़ा शुद्ध समझे, लेकिन आज तौर पर बड़ा हमारी स्थिति है प्रश्न कि जब कभी भी कुछ सेवा मिलती है और सेवा में सुख और सफलता मिलती है उससे बहुत अहंकार आता है, लगता है कि हमने बहुत बढ़िया किया है और उस अहंकार के साथ हम लोग अपनी भक्ति और प्राप्त करते रहते हैं, तो कैसा है हम लोग सेवा पहले शुद्धता प्राप्त करें फिर सेवा करें या सेवा करके शुद्ध हों फिर स्थिति दिखे।
अभी जो लास्ट पार्ट मैंने समझा हनुमान जी की सफलता के ऊपर, हनुमान जी सफलता ऐसी सफलता तो अब तो प्रभु कोई करेगा नहीं, लेकिन जब भगवान ने स्वयं बोले यू आर सो सक्सेसफुल, हनुमान जी किस प्रकार उसको टकी की माने क्या बोले तो मैं क्या किया, मैं तो कुछ सेवक मात्र हूँ, मेरा अंदर ये ताकत क्षमता कैसे है, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो प्रमाणित कर दिए केवल आप के आदेश आपकी कृपा आपकी महानता आपके प्रभाव से जो कुछ हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं निमित्त मात्र की भावना, ऐसे भक्तों से सीखना पड़ता है, ऐसे प्रकार आलोचना से ऐसे महत भावना हमारे अंदर आएगा तभी सेवा में अहंकार नहीं आ सकता, ऐसे वो ऐसे ऐसे भक्तों से सीखना पड़ता है हाउ दे आर डीलिंग। उनका जैसी सफलता हनुमान जो किए अचीवमेंट उसको तो हम स्वप्न में नहीं कर सकते, लेकिन वो अचीवमेंट को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किए भगवान के सामने, बिल्कुल सरासर बोलते ना मैंने क्या, मैं कैसे कर सकता हूँ, शाखा मृग एक बानर मात्र हूँ, क्या क्या ताकत है मेरा ऐसा कर सकता हूँ, कैसे किया केवल आपके प्रभाव, जड़ चेतन चराचर जो भी कुछ सफलता होता है जो कुछ काम बनता है तो आपकी कृपा आपके प्रभाव है, मैं क्या कर सकता, ये जो भावना ये मिलियन डॉलर एटीट्यूड है, ऐसे जैसे आचार्य जो सेवक हैं हनुमान जी वही इसका स्टेटमेंट है, ऐसे यही तो सबसे सीखना है, शिव जी ब्रह्मा जी प्रहलाद जी सब एक से एक उनका जो भाव है सभी से ही शिक्षा प्राप्त होता है, जबकि इतने बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में है इतनी बड़ी बड़ी उत्तरदायित्व, ब्रह्मा जी क्या कम बड़ा पोस्ट है, पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करें, अरे भगवान के डायरेक्ट पुत्र है, केवल पुत्र नहीं उनके स्टूडेंट है, जब ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किए तो वही दुनिया में कहेंगे भाई बेटा को तो पढ़ाना लिखाना पिताजी का काम है, लेकिन ना कोई स्कूल था ना कोई टीचर था ना कोई किताब था ना कोई पेपर था ना पेन था कुछ भी नहीं था, कैसे पढ़ाए, ना कोई सिलेबस ना कोर्स नथिंग, ही वॉज दी फास्ट एंटिटी, वो कैसे पढ़ाए उसको, परेशान हुआ मतलब मेरे पुत्र है इसको कैसे पढ़ाओ लिखाओ, तो भगवान का अद्भुत प्रकार के पढ़ाने का शैली सीधा चिप सिला करके उनके हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर दी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरयः, हम हार्ड डिस्क कहते हैं हार्ड डिस्क है उसमें सीधा डाउनलोड कर, वो ब्रह्मा जी देखो सारे देवता आश्चर्य कैसे हो गया सारे ज्ञान, मद अनुग्रहाय भवतु, मद अनुग्रह वो पूछे बोले कैसे ना मद अनुग्रहाय अस्तुते भवतु, बस हो गया भगवान कुछ भी कर सकते, यही तो इस प्रकार भगवान को जानना कि उनके कृपा से मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहंग वंदे परमानंद माधवम, ओ माधव भगवान के अगर कृपा होगा जो नालायक से नालायक व्यक्ति सलायक हो जाए, पंगु भी गिरिलंघन कर सकता है, जो मूक भी हो वाचस्पति बन सकता है, ऐसे भगवान की कृपा है, तो इसको हम समझना चाहिए, उसको ना समझ करके मैं कर दिया यही सबसे कमी है हुआ है, उनके लेस मात्र शक्ति से वजह से कुछ अगर मेरे से बन पड़ा उसको हम अपना मानेंगे, ये सब समझ। इसलिए सारे सफलता के कुंजी तदीय समर्पण उनको दे देना चाहिए, आपने कराए।
जैसे भी आपने बताया कि हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि ये सब आपकी कृपा से हुआ, तो कृपा के पात्र तो बनी गए हनुमान जी।
हाँ, तो कृपा के पात्र उन्होंने बोलते मैं नहीं बना, आपने बनाया। बोले आपने, मैं भी नहीं बना। हनुमान जी जो पॉइंट दिए, बोले मैंने तो नहीं, आपने मुद्रिका भेजे, मैंने उसी का आश्रय लिया, तब मैं बन गया, मुझे कुछ सफलता मिला।
इसका मतलब हुआ कि जो सेवा दी जाती है वो साधन है, अगर नहीं देते तो कैसे वो मुद्रिका तो पहुंच नहीं पहुंचती। अब जैसे किसी को सेवा दी और वो सेवा में अहंकार आया, अगर सेवा नहीं देते तो कहां से काम चलेगा।
Yes.
जो व्हीकल है वो आदेश है, व्हीकल जो है वो आदेश है कि तू ये कार्य कर, अगर उसको करने उस आदेश को मानने तो होना ही है। जैसे गीता में भगवान ने स्वयं कहा तो निमित्त मात्र बनना ही, तो मैं चाहता हूँ करना तो तुझे है निमित्त मात्र। इसका मतलब किसी को सेवा देते हैं तो निमित्त बना रहे, अब उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर सेवा नहीं मिली तो क्या करें।
मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वो भारत मुनि पूछ रहे हैं कि भगवान का कृपा पात्र कौन है।
कृपा पात्र वो है जिसको सेवा दी जाती
है।
तो अभी हनुमान जी के बारे जब आएगा बोलने के लिए तब सुनना, अभी क्यों सोचे। अभी तक तो यही डिसाइड किए नारद जी प्रहलाद जी मिल करके हनुमान जी कृपा का पात्र है, तो वो डिसाइड किए, अभी डिसाइड करेंगे गलत क्या है। लेकिन जब हनुमान जी सामने आएंगे ना तब वो प्रूव कर देंगे कि नहीं है। वो कैसे प्रूव करेंगे तभी सुनना। अभी तो प्रहलाद जी भी कहे कि ये सबसे बड़े कृपा के पात्र है, नारद जी माने, लेकिन जब हनुमान के पास जाएंगे वो बाकायदा प्रमाण करके दिखा देंगे ना मैं कृपा का पात्र ही ना। उनका जो प्रूव अब देखना पड़े सुनना क्या प्रण कर।
पॉइंट समझने का बहुत तगड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने किसी वकील को पकड़ना है तो मिनटों के हिसाब से पैसे लेता है, जबकि वो